नया संदेश ले फिर से, नई ज्योति जगे फिर से, नया संदेश ले फिर से, नई ज्योति जगे फिर से। उठो तपस्वियों जागो, उठो तपस्वियों जागो, नया लक्ष्य साधने का समय फिर आ रहा है। कि तपस्या का परम श्रृंगार करने का समय फिर आ रहा है। चलो अब एक नई मशाल की ज्वाला फैले, चलो अब एक नई मशाल की ज्वाला फैले। अज्ञान के घनघोर अंधकार में फिर कि मधुर रागिनी का साज भर दे, सन्नाटों से भरी वीरानियों में फिर भटकती आत्म ज्योति, भटकती आत्म ज्योति। निशा के बाद हरदम ही सूरज आता रहा है, यह जीवन की गति रही है। मैले पंख में ही पंकज खिलते रहे हैं, मैले पंख में ही पंकज खिलते रहे हैं। असंभव होने पर भी हृदय में संभव की आशाएं जीत की जलती रही हैं। असंभव होने पर भी हृदय में संभव की आशाएं हरदम जलती रही हैं। असंभव आज का सच है, असंभव आज का सच है, संभव होना है फिर भी। उठो वैरागियों, उठो वैरागियों, नव क्रांति का सूत्रपात करने का समय फिर आ रहा है। उठो वैरागियों, नव क्रांति का सूत्रपात करने का समय फिर आ रहा है। कि साधना की कठोर झंकार करने का समय फिर आ रहा है। नया संदेश ले फिर से, नई ज्योति जगे फिर से। उठो तपस्वियों जागो, उठो तपस्वियों जागो, नया लक्ष्य साधने का समय फिर आ रहा है। कि तपस्या का परम श्रृंगार करने का समय फिर आ रहा है, फिर आ रहा है, फिर आ रहा है।
ओम शांति। ये रथ मेरा, मैं राजा हूं। बड़ी शान से जीवन सैर करो। ये इंद्रिय है घोड़े, गलत नहीं दौड़े। लगाम मेरे गुरु ने पकड़ी है, मैं मन बुद्धि का साक्षी हूं। बड़ी शान से जीवन सैर करो। ये रथ मेरा, मैं राजा हूं। बड़ी शान से जीवन सैर करो। मैं राजा इस तन का, जीवन के चमन का। यहाँ तो सदा ही बहारे, जहाँ जाऊँ खुशी पाऊँ। बड़ी शान से जीवन सैर करो। मेरा न कोई दुश्मन, सभी से अपनापन। विचारों का सारा खेल है यहाँ, सुजागी का मैं दीप बनूँ। बड़ी शान से जीवन सैर करो। ये रथ मेरा, मैं राजा हूँ। बड़ी शान से जीवन सैर करो। ये प्रकृति मेरी दासी, मैं पुरुष अविनाशी। मेरे से ही सारा जगत है बना, मैं आत्म निश्चल में रहता। बड़ी शान से जीवन सैर करो। जगत मेरा भूषण, नहीं है ये दूषण। गुरु ने मेरी दृष्टि बदल दी, मैं सारी सृष्टि का मौज करूं। बड़ी शान से जीवन शेयर करो। यह है तत्व मेरा, नहीं है मेरी हस्ती, मेरा मेरी तो बस मस्ती ही मस्ती। मैं बिन कौड़ी का बादशाह हूँ, बड़ी शान से जीवन शेयर करो। ये रथ मेरा, मैं राजा हूँ, बड़ी शान से जीवन शेयर करो। स्मृति। जैसे ही स्मृति आती है, मैं कौन, स्वरूप बनने लगता है। स्वरूप परिणाम है स्मृति का। मैं राजा हूं, ये इंद्रियां घोड़े गलत नहीं दौड़े, लगाम मेरे गुरु ने पकड़ी, मैं मन बुद्धि का साक्षी। ये स्वराज अधिकारी की अवस्था है। स्वयं के इंद्रियों का राजा, मन का राजा, बुद्धि का राजा, संस्कारों का राजा, अपने जीवन का राजा। सौ पर जिसने अंकुश लगा लिया वो राजा। प्रकृति दासी, मैं पुरुष अविनाशी, मेरे से ही सारा जगत है बना। ये रथ मेरा, मैं राजा। यात्रा है राजा बनने की, स्वामी बनने की, सम्राट बनने की, स्वराज्य अधिकारी बनने की, स्व को स्वयं ही नियंत्रण में चलाने की। तो इस यात्रा के 42 दिन पूरे हुए, आज का 43वां दिन। यात्रा बहुत लंबी है, असंभव को संभव करने वाली। सुबह की अव्यक्त वाणी दो बार इस वाक्य का बाबा ने प्रयोग किया है, एक पवित्रता के लिए और एक कमाल के लिए। संपूर्ण पवित्रता अर्थात तुमने हिम्मत, तुम्हारी मदद सर्वशक्तिवान की, हिम्मत तुम्हारी मदद सर्वशक्तिवान की, इसने असंभव को संभव कर दिया। और नंबर वार हो रहा है, दूसरा कमाल दूसरा कमाल। कमाल किसे कहा जाता है? कमाल उसे कहा जाता है जहां मुश्किल सहज और असंभव संभव बन जाए। जो बात किसी के भी मन बुद्धि में नहीं, उसे साकार में कर दिखाना, अर्थात असंभव को संभव करना। स्व अटेंशन से जो किया जाता है वो है असंभव से संभव। तो ऐसे दो बार सुबह की अव्यक्त वाणी में असंभव से असंभव की चर्चा आई है। बयालीस दिन की लंबी यात्रा पूरी हुई और आज का 43वां दिन यात्रा अभी बाकी है। वैसे तो जीवन भर की यात्रा है, फिर भी 108 दिन हम ऑफिशियली इस यात्रा पर है, अधिकृत रूप से। तीन मित्र एक होटल में रुकने आते हैं, साइट सीइंग के लिए आए हैं, नया शहर है। उस होटल का मालिक कहता है, इस होटल का एक नियम है, बहुत आलीशान होटल है, बहुत बड़ा। उस सुबह साइट सीइंग के लिए निकल रहे होते हैं, तब वो मालिक कहता है 12 बजे से पहले पहुंच जाना रात को। और उनको जो कमरा दिया गया है वो 60वीं मंजिल पर दिया गया है, इतना बड़ा होटल है। मालिक कहता है 12 बजे से पहले पहुंच जाना रात को, उसके बाद लिफ्ट काम नहीं करती। वो तीनों निकल जाते हैं साइट सीइंग, यहां वहां घूमते हैं, और ये भूल ही जाते हैं कि 12 बजे से पहले पहुंचना है। वो लोग पहुंचते हैं रात को 1 बजे, तब याद आता है, अरे लिफ्ट तो बंद है, अब तो पैदल चढ़ना पड़ेगा, और पहले ही थक चुके। तो उसमें से एक जो बुद्धिमान होता है कहता है, एक युक्ति करते हैं, पहली 20 मंजिल है वो मैं तुम दोनों को अच्छे अच्छे जोक सुनाऊंगा, चुटकुले, ताकि मनोरंजन होता रहे। फिर उसके बाद अगली 20 मंजिलें जो है, जो दूसरे नंबर का साथी है, हैप्पी स्टोरीज, सुखद कहानियां, अच्छी अच्छी कहानियां, हैप्पी एंडिंग वाली कहानियां सुनाएंगे। और फिर बचे हुए 20 मंजिलें, जो तीसरा मित्र है, वो दुखद कहानियां सुनाएगा, सैड स्टोरीज, ट्रेजेडीज। तो पहला मित्र जोक सुनाना चालू करता है और 20 मंजिल कब आ जाती है पता ही नहीं चलता है। दूसरा मित्र हैप्पी स्टोरीज, सुख वाली कहानियां, प्रिय कहानियां सुनाना चालू करता है और कब 40वीं मंजिल आ जाती है पता ही नहीं। और फिर तीसरा मित्र दुखद कहानी सुनाता है, एकदम दुखद, दुखी वाली कहानियां, दुखांत वाली कहानियां। और आखिरकार सबसे लास्ट अपने कमरे के सामने पहुंच जाते हैं और वो कहता है, और अंत में सबसे दुखद कहानी है, द सैडेस्ट स्टोरी, चाबी उस कैब में ही भूल गए और कैब चली गई। तो ये थी सबसे दुखद कहानी। इस प्राणी की यात्रा में भी एक चाबी है जिसको निरंतर साथ लेकर चलना है, नहीं तो सब कुछ करने के बाद भी, सब कुछ कर लिया, सन गेजिंग कर रहे, बेयर फुट वॉक कर रहे, प्रकृति के सानिध्य में जा रहे, प्राणिक पिकनिक मना रहे हैं, जितने साधन, जितने टूल्स, संसाधनों की हम पिछले इतने दिनों से चर्चा कर रहे हैं, वो सारे साधन, यदि ये चाबी साथ में नहीं है तो खो जाएंगे। कितना ही रसाहार कर लो और कितने उपवास कर लो और कितना ही कच्चा खाओ या कुछ भी खाओ, ये यात्रा जब तक ये चाबी साथ नहीं तो ऊपर जाके फिर नीचे आना पड़ेगा और पैदल, और फिर चढ़ना पड़ेगा। और वो चाबी है मेंटल रीप्रोग्रामिंग की चाबी, वो चाबी है यहां से जो प्रोग्रामिंग है उसको यहां से बदलना है, नहीं तो 60 मंजिल, हमारे तो 108 मंजिल है, 108 मंजिल चढ़ने के बाद फिर नीचे उतरना पड़ेगा। फिर अभी तक शुरुआत से अब तक जितने टूल्स बताए वो सब सब धरे के धरे रह जाएंगे। तो हमारी दशा इन तीन मित्रों जैसी ना हो। चाबी कौन सी है? मेंटल रीप्रोग्रामिंग, जो मान्यताएं है, जो बिलीफ सिस्टम्स है उसको बदलना। और बिलीफ सिस्टम है कि ज्ञान, खुशी और फूड ये बाहर से आता है, ये सबसे गहरा है, और उसमें से सबसे गहरा है पोषण, न्यूट्रिशन बाहर से आता है, कुछ भी बाहर से नहीं चाहिए, सब कुछ भीतर ही है। सुबह की मुरली, पराया माल अपना माल, पाप का माल रावण का माल, सब कुछ इधर ही है। ये है बिलीफ सिस्टम, इसको बनाना है कि मुझे बाहर से कुछ भी चाहिए नहीं, आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं। ये मेरी मेरे प्रति चुनौती भी है और प्रण भी, कि उस अवस्था तक स्वयं को ले जाना है जहां पर बाहर का कुछ भी मुझे आकर्षित न करे। मनुष्य की जो क्षमताएं हैं, मनुष्य शरीर की जो क्षमताएं हैं, मर्यादाएं हैं, उससे परे निकल जाना। सुबह की अव्यक्त वाणी, केवल सृष्टि चक्र में देवता ही है जिनके शरीर और आत्मा पवित्र है, और किसी के भी नहीं। परंतु और भी है जो देवताओं से भी श्रेष्ठ है, ब्राह्मण आत्माएं, ब्राह्मण आत्माएं जो देवताओं से भी श्रेष्ठ है। और ऐसे जो देवता है, ऐसे जो ब्राह्मण आत्मा है, उनके लिए बाबा क्या कह रहे हैं? उन्होंने को देखा है, कहाँ है वो आत्माएं? Have you seen them? Where are they? जिनके शरीर और जिनका जिनकी आत्मा पवित्र है, ये देवताओं का गायन है एक तरफ, परंतु उनको देखा है, कहाँ है वो? तुम ही हो ना, जिनके शरीर भी पवित्र है और जिनकी आत्मा भी पवित्र है। बड़ा ही क्रांतिकारी वाक्य है। साकार मुरलियों में आता है, तुम्हारा शरीर पतित है, भ्रष्टाचार से उत्पन्न हुआ है, यहां कहां से आएगा पवित्र शरीर? पवित्र शरीर तो वहां मिलेगा। पर आज की मुरली एब्सोल्युटली अपोजिट है इन सब के। बाबा कह रहे, देखा है ऐसी आत्माओं को, कहां है वो आत्माएं? खुद ही प्रश्न पूछ रहा है भगवान, वेर आर दे? बताओ कहां है वो? देखा है क्या तुमने? जैसे किसी को पूछते ना, देखा है तुमने ऐसी आत्माएं? और फिर क्या कह रहे हैं आगे? तुम ही तो हो, सभी हो या थोड़े हो तुम में? अर्थात अर्थात इसी संगम युग पर कंचन काया निर्माण करनी है, इसी संगम युग पर कंचन काया नहीं, इसी संगम युग पर फरिश्ता देह निर्माण करनी है, क्योंकि हम सदैव श्रेष्ठ है, सर्वोपरि है, सर्वश्रेष्ठ आत्माएं हैं सृष्टि के, हमसे परे, हमसे ऊंचे इस संसार में कोई नहीं। उत्कृष्ट, सर्वश्रेष्ठ, सर्वोपरि, हाईएस्ट, द होलीएस्ट, अनादिकाल, आदिकाल, मध्यकाल, अंत में, सभी समय में, हमसे परे, हमसे ऊपर, हमसे अधिक बेमिसाल कोई भी नहीं है। कोई भी हो, फिर हो, किसी की भी आत्मा और शरीर दोनों पवित्र हो ही नहीं सकता है। बाबा कहते तुम्हारी शरीर और तुम्हारी आत्मा दोनों पवित्र है। कब? अभी, इस समय। ये संपूर्ण यात्रा शुद्धि की यात्रा है, पवित्रता की यात्रा है, होली बनने की यात्रा है, होलीएस्ट बनने की यात्रा है, श्रेष्ठ से श्रेष्ठतर, श्रेष्ठतर से श्रेष्ठतम, पवित्र से पवित्रतर और पवित्रतर से पवित्रतम बनने की ये यात्रा है। हाईएस्ट होलीएस्ट, हमसे अधिक होली कोई हो ही नहीं सकता। क्यों क्यों क्यों? क्योंकि किसके संग में हो? केवल कंपनी नहीं, केवल कंपेनियन नहीं, कंबाइंड, नहीं तो फ्रेंडली क्वारल, इंग्लिश शब्द का प्रयोग आया मुरली में, अलोन फील करते हो, डबल फॉरेनर्स, कंपनी, कंपेनियन, कंबाइंड, ट्रिपल सी, कंबाइंड हो, किसी की ताकत नहीं जो अलग कर सके, अभी तक पैदा ही नहीं हुआ है वो कोई, उसका अभी जन्म ही नहीं हुआ है इस सृष्टि पर। एक बहन कहती थी, अभी तक ऐसा कोई संसार में जन्मा ही नहीं जो मेरा अपमान कर सके, दूसरा हमारा अपमान तब तक नहीं कर सकता जब तक हम अनुमति ना दे। समान में रहो, आज भी कहा है, रूहानी समान, रूहानी नशा है ये, ये अभिमान नहीं है, ये नशा है, नशा बहुत सूक्ष्म है। समान को रिपीट करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ, तो क्या बन जाता है? नशा, धीरे धीरे वो नशा का रूप धारण करता है, नशा बहुत सूक्ष्म है। तो इस यात्रा में गीत में सुना, मैं राजा हूं, ये रथ मेरा है, बड़ी शान से जीवन सैर करूं, ये इंद्रिया है घोड़े, गलत नहीं दौड़े, लगाम मेरे गुरु ने पकड़ी है मन बुद्धि, मैं मन बुद्धि का साक्षी हूं, बड़ी शान से जीवन सैर करूं, ये रथ मेरा, मैं राजा। स्व को जीतने की यात्रा है, स्वयं पर आधिपत्य स्थापित करने की यात्रा है, स्वयं को सर्वश्रेष्ठ बनाने की यात्रा है, सर्वश्रेष्ठ हो भी और बन भी रहे हो, जैसे कहा असंभव संभव करने वाले हो और नंबरवार हो, सुबह की अव्यक्तवाणी, यह है प्यूरिटी। प्यूरिटी कैसे स्थापित की, कैसे पाई तुमने प्यूरिटी? हिम्मत तुम्हारी सर्वशक्तिवान बाप की मदद, इस आधार पर असंभव को संभव किया, दादी जानकी से मुलाकात, दादी जानकी से मुलाकात, कमाल वो है जो असंभव संभव हो गया, जो मुश्किल था, जिससे कोई सोच भी नहीं सकता है कि ये हो भी सकता है, वो साकार कर दिया, स्व अटेंशन से असंभव संभव किया, पर्सनल पुरुषार्थ से, ये है। इसके लिए लक्ष्य बहुत ऊंचा हो, छोटा मोटा लक्ष्य नहीं रखना है, नॉट फेलियर बट लो एम इज क्राइम, पराजय हो जाना, असफलता हो जाना ये अपराध नहीं है, परंतु लक्ष्य ही छोटा रखा है पहले से, ये अपराध है तुम्हारा। तो यात्रा में सभी आगे बढ़ रहे हैं, इसलिए एक चाबी चाहिए मेंटल रिप्रोग्रामिंग की, मान्यताओं, जो मान्यताएं बनी है, मान्यताएं कहां से निर्माण हुई है? बचपन से निर्माण हुई, माँ बाप से निर्माण हुई है, कहाँ से निर्माण? समाज ने निर्माण की है, डॉक्टरों ने निर्माण की है, साइंटिस्ट लोगों ने निर्माण, डाइटिशियंस ने निर्माण की है, ये चाहिए, वो चाहिए, ये चाहिए, ऐसा चाहिए, वैसा चाहिए, ऐसा भी चाहिए, वो भी चाहिए, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, ये भी करो, वो भी करो, वो भी करो, ऐसा होगा तो वैसा होगा, और वो नहीं होगा तो ये हो जाएगा, वो नहीं खाओगे ये नहीं खाओगे तो तुम ये हो जाओगे। ये कितनी मान्यताओं से भरे लोग हैं हम, भय है अंदर, भय। सबसे पहले इन मान्यताओं पर ही कुठाराघात करना है। लेट अस ट्राई, लेट अस एक्सपेरिमेंट। और ये करते करते एक बहुत बड़ी बाधा बीच में आएगी, और उस बाधा का नाम है क्रेविंग। क्रेविंग अर्थात तलब, तलब अर्थात चाह, चाह अर्थात उत्कट इच्छा, लत आवश्यकता, मांग चाह तृष्णा एकदम से आएगी। यात्रा में चल रहे सब कुछ ठीक ठाक है, अचानक पता नहीं कहां से आ जाती है, और ये भूख और ये क्रेविंग, ये लॉन्गिंग, ये अर्निंग, ये जो है ये केवल और केवल शरीर की नहीं है। चार प्रकार की भूख है। पहले शरीर की भूख, शरीर की दो प्रकार की भूखें हैं, एक भोजन की और एक शरीर की। शरीर को शरीर की भूख है, काम विकार। सुबह की अव्यक्त वाणी चलता है, कोई देखता थोड़ी ना है, ये तो मन में हो रहा है, कर्म में तो आए ही नहीं है। बाप को चलाते हो, चलाते चलाते चलते चलते द्वापर तक पहुंच जाओगे, त्रेता तक पहुंच जाओगे, द्वापर नहीं त्रेता, थोड़ा और आगे बढ़ा दिया। भगवान को चला रहे, चलाते चलाते कहां पहुंच जाओगे, त्रेता तक पहुंच जाओगे। चलाने वाले को बाप दादा अच्छी तरह से जानते हैं। मैं शरण तब दूंगा, परसों की साकार मुरली, विठल भाई मैं शरण तब दूंगा, आशीष भाई मैं शरण तब दूंगा, माताजी मैं शरण तब दूंगा, जब नष्टो मोह होंगे तब तक नहीं दूंगा। इसमें उसमें अटके हुए हैं। तो चलाना नहीं, तो बीच में सबसे बड़ी बाधा कौन सी आती है, क्रेविंग। तुरंत सब कुछ, सारे नियम मर्यादाएं तोड़कर भोग, तो सबसे बड़ा क्रेविंग, सबसे बड़ी भूख है शरीर की, फिजिकल शारीरिक। दूसरी भूख है, चार प्रकार की भूख है, फोर टाइप्स ऑफ हंगर। इमोशनल, भावनात्मक, कोई चाहिए, आज कहा ना डबल विदेशी, अलोन फील करते हैं, अकेला फील करते हैं। बाप साथी है, कंपनी बना लिया, कंपनी में रहते पर फिर कंबाइंड नहीं रखा है, इसलिए इमोशनल सपोर्ट चाहिए किसी का। कोई बात कर ले, हल्का कर दू, किसी के सामने बोल दू, एक कंधे की तलाश है बस, इस माथे को इस सर को एक कंधे की तलाश है, सहारा चाहिए, ये आंसू गिरना छलकना चाहते हैं बस, किसी के कंधे पर सर रखू और थोड़ा रो लू तो अच्छा लगता है, कोई यहां आके हाथ रख देना, आहा इतना अच्छा लगता है, रखे रहो थोड़ी देर, अच्छा लग रहा है। बैसाखियों की आवश्यकता है, ये मार्ग अकेले के अकेले की तरफ का मार्ग है, एकला चालो रे, किसी को भी साथी बनाया तो वो साथी ही बाधा बन जाएगा मार्ग में। अकेले चलना है, द पाथ इज नैरो, जामे दो ना समाए, छोटा सा मार्ग है, जामे दो ना समाए। इमोशनल सपोर्ट गिरा दो, गिरा दो। संन्यास के तीन नियम जिसमें पिछली भट्टी में चर्चा की थी, पहला नियम संन्यास के तीन नियम है, पहला नियम ब्रेक द ब्रिज, दूसरा नियम कट द ड्राउन द बोट। तीसरा नियम थ्रो द लैडर। पहला नियम है बीच में खाई है, इस पार से इस पार आ गए सैनिक, बीच में पुल बांधा, उधर आने के बाद पुल को काट दो। अब इस किनारे से उस किनारे आ चुके, अब पुल को काट दो। आज की साकार मुरली, पुरानी दुनिया, पुराने संस्कार, मरा हुआ है वो सब, मृत्यु हो चुकी है तुम्हारी, मृत्यु के पुराने जन्म की बातें है वो, अब नया जन्म नए संस्कार। सुबह की अव्यक्त वाणी, काट दो पुल को। उस पुल बांधकर इधर आए थे, आर्मी उधर से इधर आई, अब काट दो। अगर जब तक पुल बना है ना, तो आर्मी के मन में है, सेना सोचती है कि अगर दुश्मन हावी हो जाए तो भाग जाएंगे। अब पुल ही काट दिया, अब तो भागने का कोई चांस ही नहीं है। संसार से मधुबन में आ गए, काट दिया, अब उधर जाने का कोई चांस ही नहीं। यहां मत बैठ जाना पर सेवादारी, ये तो मुश्किल हो जाएगी। ये मन की बातें चल रही है, स्थूल में रहने की नहीं। दूसरा नियम ड्राउन द बोट। नाव से उस पार से इस पार में आए हैं, अब नाव आने के बाद नाव को डुबो दो, ताकि वापस उस पार जाने का कोई संकल्प नहीं। ड्राउन द बोट। और तीसरा नियम, नीचे से ऊपर सीढ़ी से गए हो, ऊपर पहुंच गए, सीढ़ी फेंक दो, लात मार दो सीढ़ी को। थ्रो द लैडर। ड्राउन द बोट, थ्रो द लैडर एंड कट द ब्रिज। ये है संन्यास, ये है तपस्या, ये है वैराग। एक ट्रेन में एक सन्यासी जा रहा है, उसके आसपास गृहस्थी बैठे हुए हैं। वो गृहस्थी पूछते हैं कि हम लोग तो सन्यासी है, हम लोग तो गृहस्थी है, हमारे पास ये सब सामान है, हमारा लगेज, तुम तो सन्यासी हो, तुमने सब कुछ छोड़ दिया, फिर भी इतना बड़ा झोला लेके घूमते हो, अभी तक मोह गया नहीं, इतना बड़ा बैग क्या क्या भर रखा है उसमें। सन्यासी कुछ नहीं कहता, चुप। थोड़ी देर के बाद ट्रेन एक पुल से गुजरती है, सन्यासी अपनी बैग निकालता है नीचे से और खिड़की से फेंक देता है, और उस व्यक्ति से कहते हैं अब तुम भी अपनी बैग फेंको। वो कहते हैं मैं क्यों फेंकू, उसमें कितनी बहुमूल्य वस्तुएं हैं। वो कहते हैं मेरी भी बैग में थी। सन्यासी कहता है यही अंतर है तुम में और मुझ में, मेरे पास भी वस्तुएं हैं परंतु लेश मात्र किंचित भी उसमें राग नहीं है, जब चाहूं तब छोड़ दू, फेंक दू, यही अंतर है। तो दूसरी भूख है इमोशनल, कोई व्यक्ति चाहिए, कोई सहारा चाहिए, कहीं जाओ तो लोग हमारी प्रशंसा करें, हमारी महिमा गाए, हमारे स्वागत सत्कार में खड़े हो, प्रेम दे, अटेंशन दे। भूख, ये भूख है किसकी, प्रेम की भूख। स्थूल वस्तु नहीं चाहिए किसी को, प्रेम चाहिए, सम्मान चाहिए, आदर चाहिए, अटेंशन चाहिए, केयर चाहिए, हॉस्पिटैलिटी चाहिए, एप्रिसिएशन चाहिए, एक्नॉलेजमेंट चाहिए। हम अच्छा काम करें तो बहन जी हमारी स्तुति करे, कुमार हमेशा सोचते हैं, और जब सबका नाम लिया जाता है और उनका नाम नहीं लिया जाता है तो हर्ट हो जाते। इतना बड़ा प्रोग्राम हुआ, भाग भाग के बाइक पर हमने सेवा की और हमारा नाम ही नहीं, नाम किसी और का हो रहा है। दुखी हो जाते, जिसने जो किया उसका अपने आप ऊपर जमा होता है, ये क्यों भूल रहे। परमात्मा मशीनरी से, इस मशीनरी चल रही है, मुरली की लास्ट लाइन आज की, अपने आप चल रहा है यहाँ सूक्ष्म वतन की, किसी के सहारे की, ना व्यक्ति चाहिए, ना वस्तु चाहिए, ना वैभव चाहिए, ना कोई नहीं चाहिए। तुम्हारा मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। वुमन आई डोंट नीड यू, मैन आई डोंट नीड यू, गेट लॉस्ट। तीसरा मेंटल इंटेलेक्चुअल भूख, ये भी एक भूख है, इंटेलेक्चुअल भूख, और अहंकार भरी भूख है ये, इंटेलेक्चुअल, और डिग्रियां, और ये और वो चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए, बहुत कुछ चाहिए, और ये भी कितना भटकाती है व्यक्ति को और अहंकार से भरती है। और चौथी आध्यात्मिक भूख, स्पिरिचुअल हंगर, तृप्ति नहीं है। सब कुछ मिल गया है परंतु तृप्ति नहीं है, संतुष्टता नहीं है, हमेशा देख रहे दूसरों को ज्यादा मिला है, सम्मान उसको ज्यादा मिल रहा है मुझे कम मिल रहा है, उसको एक मफलर ज्यादा मिला है मुझे कम, उसके पास का जो स्वेटर है वो मेरे से अच्छा है, उसकी शॉल बहुत अच्छी है, उसकी टोपी अच्छी है। क्रेविंग, क्रेविंग को कैसे मिटाए, और सबसे बड़ी क्रेविंग आज हम चर्चा करेंगे ये जो भूख है, फिजिकल हंगर, अगर उस पर काम किया जाए तो ये बाकी सारी क्रेविंग्स अपने आप चली जाती है। उसके कुछ विधियां है, सबसे पहली जिनको दिन रात क्रेविंग होती रहती है, तलब होती रहती है कुछ ना कुछ खाऊं, ये खाऊं वो खाऊं, कुछ ना कुछ मिले, भूख ही भूख, भूख का प्रकोप भौचाल आ गया है, भूख का दिन रात खाऊं खाऊं खाऊं, इतना खाऊं क्या खाऊं, पर पेट तो भर जाता है पर मन नहीं भरता, मन भरता ही नहीं। अठारह बातें जो हम देखेंगे, सबसे पहली कोई मेडिकल कंडीशन हो सकती है या कोई दवाइयों का असर हो सकता है, सबसे पहले तो इसकी खोज करो कि कहीं ये बीमारी तो नहीं। डायबिटीज के जो पेशेंट होते हैं वो डायग्नोस कैसे होते, कई बार कहते हैं बहुत भूख लगती है, बहुत प्यास लगती है और बहुत पेशाब आती है, पॉलीयूरिया, पॉलीफेजिया, पॉलीडिप्सिया, ये तीन लक्षण है डायबिटीज के, मधुमेह के, बहुत ज्यादा भूख लगती है, बहुत ज्यादा प्यास लगती है और बहुत बार पेशाब होती है। जब ऐसा हो जाए तो समझ लेना डायबिटीज हो सकता है। हम सोच रहे हैं ये मन का है, मन का नहीं है ये, कारण ये है। कई सारे बीके भाई बहने आते हैं, कहते थकान लगती है, वजन बढ़ रहा है, पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है और कई समय से हो रहा है, चेकिंग किया नहीं, नहीं कोई चेकिंग नहीं किया, हमको लगता है ये स्ट्रेस टेंशन की वजह से हो रहा है। वो स्ट्रेस टेंशन नहीं है, वो साइकोलॉजिकल नहीं है, वो फिजिकल है। थायराइड चेक करते तो सीधा 100, हर हफ्ते 2 से 3 नए थायराइड के पेशेंट डायग्नोज होते हैं हर हफ्ते। अभी अभी एक भाई अपने पिताजी को लेके आया, पिताजी 12 दिन हॉस्पिटल में थे, उनको शुगर है, सबको है, और वो जो बेटा है एकदम यंग, लास्ट दिन आज शाम को ट्रेन है, उसने तब सोचा एक बार मेरा भी कर लो शुगर, देखा तो 500। इतना दिन इधर था, घूम रहा था, सब कुछ कर रहा था, रोज आके मिलता था, अभी कैसी है तबीयत पिताजी की वगैरह वगैरह। तो सबसे पहला कारण है जो 40 साल के ऊपर है, हर साल में एक बार फुल मेडिकल चेकअप होना चाहिए, और जो 40 साल से नीचे है अगर उनको लगता है कोई तकलीफ है तो तुरंत एक बार कंप्लीट चेकअप, ताकि पहले ये श्योर हो जाए कि मेडिकली हम फिट है, टू बी ऑन द सेफर साइड। नहीं तो पहले से ही इतनी सारी गड़बड़ चल रही है और उसमें ये सब चालू कर दिया तो और ही गड़बड़ हो जाएगी। मेटाबॉलिक सिंड्रोम एक्स, तो सबसे पहला मेडिकल चेकअप, दूसरा ये मेडिकेशन या फिर कोई दवाइयों का असर हो सकता है। बहुत सारी दवाइयां ऐसी है कि जिससे भूख अपने आप ही बढ़ जाती है, बहुत सारी दवाइयां है, मिर्गी की दवाइयां, ब्रेन की दवाइयां, बहुत सारी ऐसी दवाइयां है, तो पहले चेक कर लो कहीं वो दवाई की वजह से तो नहीं हो रहा है ऐसा। ये है पहला मेडिकल स्थूल। दूसरा कारण जो क्रेविंग को हटाने के लिए चाहिए वो है डिहाइड्रेशन। कई बार व्यक्ति के शरीर में पानी की कमी होती है और उस कमी को वो भूख समझता है। एक है प्यास, प्यास को भूख समझने की गलती, लगती है प्यास पर क्या कर लेता है, खा लेता है, पर वो भूख नहीं होती, वो प्यास होती है। भूख और प्यास, भूख लगे तो पहले थोड़ा सा पी के देखो पानी, हो सकता है कि उसके बाद भूख ही ना लगे, और हो सकता है कि डिहाइड्रेशन था शरीर में। मैक्सिमम ये होता है क्योंकि लोग दिन भर इतना ठोस चीजें लेते रहते हैं कि उसको डाइजेस्ट करने के लिए पानी चाहिए, पानी मांगता है शरीर, और जब नहीं दिया जाता है तो फिर मुश्किल होती है। जितना ठोस लेंगे उतना पानी ज़्यादा चाहिए, जितना तरल लेंगे उसमें पानी नहीं चाहिए फिर। तीसरा कारण, नींद। नींद अगर कम ले रहे हैं तो बार बार भूख लगती रहती है, पर्याप्त निद्रा नहीं हो रही है किसी की तो दिन भर में भूख लगती रहती है। जिसमें अच्छे से नींद हो जाए एकदम फ्रेश नींद तो फिर भूख नहीं लगती, साउंड स्लीप। चौथा, जंक फूड 4S। ये 4S जहाँ होंगे वहाँ भूख ही भूख है। पहला, नमक, बहुत नमक। किसी को नमक 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 खाने की इतनी आदत है और उनको नमक जब शरीर में जाता है सोडियम है, सोडियम वाटर मांगता है। एक एक्सपेरिमेंट करके देखो, 3 दिन तक 0 salt, 3 दिन तक 0 salt, नमक कुछ भी नहीं। एक अनुभव, ये एक्सपेरिमेंट का मार्ग है, ट्रायल एंड एरर का मार्ग है। हम कह रहे करके नहीं, खुद प्रयोग करके देखो। 3 दिन बिल्कुल भी नमक नहीं, किसी भी प्रकार का नमक नहीं। देखो क्या होता है। तीसरे दिन आते होते होते पता चलेगा प्यासी नहीं है ना तो भूख, प्यास भूख दोनों क्रेविंग चला गया है, बिल्कुल भी नहीं रहा क्रेविंग। अर्थात जो क्रेविंग था वो किसका था, नमक का था। दूसरा है शुगर, तीसरा है स्पाइसेस मसाले, ढेर सारे, कितने मसाले डालते पता नहीं। लोगों को ऐसा होता है क्या डालू और क्या नहीं, खुद बनाते हैं तो सब डाल दो, ये भी डालो वो भी डालो, इलायची भी डालो वो भी डालो, जवंग वो वहाँ धनिया भी डालो ये भी डालो, लवंग भी डालो, सब डाल दो, जो जितने डिब्बे हैं ना छोटे 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 पकड़ पकड़ के सब डाल दो उसमें, फिर भी लगता है कम ही है। गरम मसाला डालो, ठंडा मसाला डालो, चाट मसाला डालो, एवरेस्ट वाला डालो, घर का बर्त बनाया वाला डालो, इलायची डालो, उसके स्पाइसेस जितने ज्यादा उतनी भूख ज्यादा। उसके बाद में स्पार्क, स्पार्क अर्थात फायर, जितना पका पकाया होगा उतनी भूख ज्यादा, जितना आग पर चढ़ाया होगा उतनी भूख ज्यादा। सन कुक्ड अगर होगा तो भूख कम, प्यास भी कम। तो ये हो गया 4 कारण। पहला बताया, पहले फिजिकल चेकअप एक बार कर लो, मेडिकल चेकअप पूरा कर लो और ढूंढो कोई दवाई तो नहीं है ऐसी जिसकी वजह से ये हो रहा है। दूसरा, डिहाइड्रेशन, पानी की मात्रा पर्याप्त हो। तीसरा, स्लीप, नींद पर्याप्त हो। चौथा, जंक फूड। उसके बाद में पांचवा डिस्ट्रैक्ट योरसेल्फ। कई बार भूख लगती है जो जरूरी नहीं जाके खाने ही जाए, अपने आप को डिस्ट्रैक्ट कर दो, एक्सरसाइज करना चालू कर दो, नक्की के राउंड के लिए चले जाओ, अपना कमरा साफ करना चालू करो, अलमारी में जितनी चीजें रखी है सब निकालो फिर से रखो, डिस्ट्रैक्ट, म्यूजिक सुनो। ये जो क्रेविंग होती है, संवेदनाएं होती है, ये अनित्य है। जरूरी नहीं है कि जो इच्छा हो उसको पूर्ण करना ही है, और ये केवल भोजन की नहीं और भी दूसरी है। जब इस पर कंट्रोल आ जाएगा, ये स्थूल है, तब अपने आप सूक्ष्म पर कंट्रोल आएगा। काम स्थूल से चालू करना है और धीरे धीरे सूक्ष्म की तरफ जाना है। काम इस शरीर पर हो और फिर आत्मा की तरफ बढ़ना है, अपने आप होगा। तो डिस्ट्रैक्ट कर दो अपने आप को। अगला, इग्नोर द पैंग्स, इसको कहते हैं हंगर पैंग। हंगर पैंग्स जो होते हैं अंदर से आते हैं कि कुछ खाऊं कुछ खाऊं, उसको निग्लेक्ट करो, इग्नोर करो। एक तो कहा अपने आप को अलग दिशा में डिस्ट्रैक्ट कर दो, अलग कर दो, कुछ और करना चालू कर दो, किससे बात करो, कुछ करो, कुछ भी करो, डिस्ट्रैक्ट योरसेल्फ। दूसरा है इग्नोर करो उसको। इग्नोर कैसे करेंगे, उसके लिए चाहिए बॉडी स्कैनिंग वाला मेडिटेशन डेली, अधिष्ठान, और आशा है सभी कर रहे हैं। वो हमारा बहुत पावरफुल टूल है। बैठ जाओ, अनित्य है, अनित्य है, ऊपर से नीचे तक, नीचे से ऊपर, जिन की तरह घूमते रहो। इस शरीर के संवेदनाओं को देखो क्या हो रहा है, अंग प्रत्यंगों से शरीर मन को घुमाओ, यहाँ क्या हो रहा है, 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 यहाँ क्या हो रहा है। एक एक इंच भी छूटना ना पाए, सुई की नोक जैसा शरीर का भाग छूटना ना पाए, इतना सूक्ष्म मन की निरीक्षण करो, मन से शरीर का। पहले स्थूल से चालू करो, ये देखा ये देखा ये देखा ये देखा ये देखा ये देखा, पैर देखे, पीठ पैर, फिर से सेकेंड टाइम, थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, नीचे से ऊपर। एक समय आएगा और शरीरीपन होगा एकदम, केवल तरंगे ही तरंगे। और तब जो भी संवेदनाएं हैं, सेंसेशंस है, वो केवल और केवल अनित्य धर्म है, ये अनुभव होगा। इसी तरह भूख भी अनित्य धर्म है, थोड़ी देर के लिए उसको छोड़ दो, यहां खुजली हो रही है, हो रही है, जरूरी नहीं है उसको खुजली करो, खुजली करोगे तो और खुजली होगी, खून निकलेगा, फिर बस उसको साक्षी होकर देखो, चली जाएगी, अनित्य है, क्षणभंगुर है, मरण धर्म है, अब विपरिणाम धर्म है, वो ट्रांजिटरी है, थोड़ी देर में खत्म हो जाता है, जरूरी नहीं है उसको भोगना ही है करके। तो दूसरा, अपने आप को क्या कर दो, उस हंगर पैंग को इग्नोर करो। तीसरा, हाँ मतलब इसमें से चार चार के ग्रुप्स है, तो इसमें तीसरा या सातवा, जो ईटिंग का साइकिल है उसको देखना है कि जब हमें भूख लगी और हमने खाया, कितना कम चाहिए जिससे भूख भर जाती है। और ये एक निरीक्षण है, थोड़ा खाओ या ज्यादा खाओ, उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, पेट को ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, वो उसमें भी संतुष्ट हो सकता है, उसमें भी संतुष्ट होता है, खेल मन का है, केवल खेल इधर चल रहा है सारा। इसके लिए ट्रेनिंग देनी है उसको, माइंड को, ये और ये दोनों सेम है, इतना ले लू क्या, इतना ले लू क्या, वो सेम ही है, ये ट्रेनिंग देनी है माइंड को। थोड़ा सा ले लिया, बस रोक दो, अभी जो बचा है ना थोड़ी देर के बाद लेंगे, और थोड़ी देर के बाद जब भूल जाओगे ना तो भूल ही जाओगे, फिर जरूरत ही नहीं। एक अगला, कॉन्शियस ईटिंग, इस पर पिछली भट्टी में क्लास हुआ था, कॉन्शियस ईटिंग पर या ड्रिंकिंग पर। कॉन्शियस ईटिंग मतलब पूर्ण सजगता के साथ मैं बैठा हूं, सामने क्या है, ये ब्रह्मा भोजन है, इसको मैं दृष्टि दे रहा हूं, हाथ लगा रहा हूं, स्पर्श कर रहा हूं, टच कर रहा हूं, फ्रूट गेजिंग देख रहा हूं, ये क्या क्या है, उसके पोषक तत्वों का चिंतन कर रहा हूं, इससे मुझे क्या क्या मिलेगा, मेरे विकार दूर होंगे, सब संकल्प कर रहा हूं अच्छे अच्छे, और उसके साथ धीरे धीरे उसको खा रहा हूं, बहुत स्लोली स्लोली, जितना स्लो खाएंगे, जितना फास्ट खाएंगे, एटलीस्ट 20 मिनट्स लगता है ब्रेन को सिग्नल जाने के लिए। इधर दो सेंटर, एक भूख का सेंटर, एक सेशिएटी सेंटर, हंगर एंड सेशिएटी। ग्रेलिन नाम का हार्मोन होता है जो हंगर हार्मोन है, जो रिलीज होता है। तो इस सेशिएटी सेंटर तक संदेश जाने के लिए 20 मिनट लगते हैं। गन्ने का जूस दिया, खटखट 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 पी लिया, थोड़ी देर के बाद फिर भूख लग गई, क्योंकि ब्रेन को सिग्नल ही नहीं पहुंचा, वो केवल एंटरटेनमेंट और वो केवल एक भोग विलास हो गया बस। उतना ही अगर एक ग्लास जूस आधे घंटे में चम्मच से धीरे धीरे लोगे तो ब्रेन को संदेश देंगे, वाह बहुत हो गया, अभी कुछ नहीं चाहिए, मिल गया जो मिलना था, पाना था सो पा लिया, दिन भर का खाना था सो खा लिया, पीना था सो पी लिया, अब कुछ नहीं चाहिए। तो इसको कितना देर, 20 मिनट मिनिमम पीने को या खाने को, और बैठ के आराम से प्यार से सिप सिप करते हुए धीरे धीरे। अगला है, हाँ ये चार हो गए, उसके बाद में ये है माइंडफुल ईटिंग, फिर है प्रेयरफुल ईटिंग। प्रेयरफुल ईटिंग अर्थात प्रार्थना पूर्वक धन्यवाद के भाव से किसको याद करो भोजन के समय, उस जमीन की, उस किसान को, वहां से चालू करो, उसको धन्यवाद, उस धरती को धन्यवाद, जो जो जिसने जिसने ये जिसने बनाया, जिसने छाना, जिसने भोग लगाया, बाप को, सब सब सबको धन्यवाद के भाव से भर दो, अहोभाव से भर दो, इतना धन्यवाद का भाव अंदर हो, उसके साथ उसको स्वीकार करना, तो अपने आप ही कम क्रेविंग कम हो जाएगी। हमको क्रेविंग जब होती है तो हम क्या करते, तुरंत खा लेते, खड़े खड़े खाते और फास्ट खा लेते, बस जल्दी जल्दी में उतना देर के लिए शांत हो जाता है वो बस, और थोड़ी देर के बाद फिर से राक्षस उभर कर बाहर आता है, अंदर एक राक्षस बैठा हुआ है हर एक के अंदर, अंदर लड़ाइयां चालू है दोनों की। एक बच्चा अपने पिता से पूछता है, एक प्राणी संग्रहालय में जाते हैं, एक इसमें चिंपैंजी होता है और एक इसमें एक गाय, बच्चा पूछता है इन दोनों की लड़ाई हुई तो कौन जीतेगा, चिंपैंजी की और एक गाय, एकदम सिंपल सात्विक। तो पिताजी कहते हैं ये दोनों जो है ना हमारे अंदर है और जीतेगा वो जिसको तुम भोजन दोगे ज्यादा। आप भोजन गाय को दे रहे हो या चिंपैंजी को, अपने अंदर के देवत्व का पोषण कर रहे हो या अपने अंदर के राक्षस का पोषण कर रहे हो, उस पर निर्भर करता है किस समय कौन जीतता है। प्रेयरफुल ईटिंग, उसके बाद में अगला एपिटाइट सप्रेसेंट्स का प्रयोग करो। ऐसे बहुत सारे चीजें हैं जो एपिटाइट को कम कर देता है, जैसे डेट सिरप, खजूर, ये इस यात्रा में बड़ा इंपॉर्टेंट है। जिसको भी इस यात्रा में आगे बढ़ना है, खजूर पेस्ट, खजूर सिरप, रात में खजूर भिगो के रखो, सुबह बीज निकाल दो, छान लो, खजूर पेस्ट रेडी, और उसको यूज करते रहो। जब भी भूख लगे दो चम्मच पानी में डाल के पी लो, भूख शांत। बाकी जंक खाने से अच्छा, वो मुरमुरा खाने से अच्छा, वो सैंडविच खाने से अच्छा, ये ठीक है। दूसरा ग्रीन टी, हर्बल टी, ये भी एपिटाइट को सप्रेस करता है। अगला सन गेजिंग, सूरज को देखते रहो, सुबह देखो शाम को देखो, जब भी समय मिले सुबह शाम में, पर सुबह या शाम, दिन में नहीं, जब अल्ट्रावायलेट रेज और यूवी रेज, आईवी आईआर रेज नहीं रहे। दिन में देखना है, आंखें बंद करके भी देख सकते हैं, ये भी कोई कोई लोग कहते हैं। अगर ऑपरेशन हो गया आंखों का तो बस सूरज के सामने आंखें बंद करके खड़े हो जाओ, आंखें भी सुरक्षित रहेगी और किरणें भी मिलेगी। और सारा खेल तो मन का है, आखिर मन से इमेजिन करो, सब खेल इधर है। कोई कहता है हवाई जहाज में जा रहे तो धरती पर नंगे पाँव कैसे चलेंगे, चल सकते हैं, हवाई जहाज में बैठकर भी चल सकते हैं, खेल तो मन का है ना। मन से इमेजिन करो मैं चल रहा हूं, खत्म। चार धाम की यात्रा रोज कर सकते हो, जरूरी नहीं है मधुबन में जरूर रहना है। तो क्या बताया, एपिटाइट सप्रेसेंट, एपिटाइट अर्थात भूख को कम करने वाली बहुत सारी चीजें ऐसी, ये सारी चीजें। अगला, उसके बाद में बिजी कर दो खुद को, जितना बिजी रहेंगे ना दिन भर उनको भूख नहीं लगती, और जो खाली बैठे हैं तो डब्बे डुब्बे खोलते रहते हैं, क्या है किसमें, कमरे में कुछ है क्या, याद करते हैं वो किसी, वो बहन ने वो दिया था, वो देखते हैं कहाँ है क्या, ये है क्या, डब्बे डुब्बे खोल खा, अभी ये खाली है डब्बा, इसमें क्या भरना है, ये सोचते रहते बस। तो ये जब, ये तभी होता है जब व्यक्ति खाली पीली बैठा होता है। इसलिए अपने आप को ऐसी दिनचर्या रखो, एक मिनट भी इधर उधर नहीं। अगर फोन पे थोड़ी ज्यादा बात होगी तो दुख होना चाहिए, टाइम वेस्ट हो गया। बिजी कर दो खुद को, ये सबसे बेस्ट है। और एक एपिटाइट सप्रेसेंट और है, ब्रश कर ला। क्या करना है, भूख लगने के बाद बाथरूम में जाके ब्रश करना चालू कर दो। एनिमा भी एक मेथड है कि जिससे एनिमा लेने के बाद में सीधा खाने की इच्छा नहीं होती। अभी अभी एनिमा लेके पूरा साफ किया, तुरंत कुछ करो ये बिल्कुल नहीं होगा। एनिमा इज वन ऑफ द मेथड्स, ब्रश कर लेना, ये भी एक मेथड है। कई लोग कहते हैं, साइंस कहता है ब्लू रंग की प्लेट यूज करो तो भूख कम होती है। अभी हमने नहीं किया है, फिर लिखा है, फिर कहते हैं ये जो है ना पिन्ना, ये अकुपंक्चर पॉइंट है भूख का, इसको दबाओ ऐसे ऐसे, ये पॉइंट है, इसको दबाते जाना ऐसे, इससे भी कम होती। तो क्या बताया, बिजी कर दो खुद को, बिल्कुल भी कहीं पर भी व्यर्थ का के लिए टाइम ही नहीं है। उसके बाद में थिंक ऑफ बेनिफिट ऑफ नॉन ईटिंग, न खाने के क्या क्या फायदे हैं। जिस दिन 6 घंटा नहीं खाया था कितना ठीक था, सब कुछ ओके, जैसे खाया लूज मोशन चालू हो गया तो कुछ हो गया, उसके फायदे का चिंतन करते रहना। और ये चिंतन ऐसे नहीं कि पर्टिकुलर टाइम पे, दिन भर चलते फिरते उठते बैठते। उसके बाद में ये भी चिंतन करो ओवर ईटिंग से क्या क्या नुकसान हुआ था, जिस दिन ज्यादा खा लिया था उस दिन खट्टी खट्टी डकारे आती है यहाँ पे सुबह सुबह, पूरा ऐसी जहर करते रहते ऐसे अमृत वेला, यहाँ डकारे आती है, अनयूजुअल टाइम पर मोशन, अमृता चालू है उसके 4:30 बजे उठ के बीच में से जाओ, मुरली से उठ के बीच में जाओ, ड्यूटी से उठ के बीच में जाओ, कितनी गड़बड़ होती रहती है। ट्रैवलिंग में तो फिर बात मत पूछो, ट्रैवलिंग में तो बहुत ही हालत खराब। इसके लिए ट्रैवलिंग का नियम बताया है, न खाना न पीना। यात्रा करते समय सबसे अच्छा नियम है, अब भी संकल्प दे मन को, 10 बजे ट्रेन है, दूसरे दिन 10 बजे पहुंचने वाली है, जो खाना है 10 बजे बैठ के खा लिया, अब ट्रेन में हम चढ़ने वाले हैं, ट्रेन के अपवित्र दूषित वातावरण में मुझे मेरे शरीर में कुछ भी नहीं डालना है। संकल्प कर लो, सीधा शक्तिशाली संकल्प, कंप्लीट निर्जला। अगर नहीं हो सकता है तो ऑप्शन 1 पानी, ऑप्शन 2 फ्रूट्स, ऑप्शन 3 अंकुरित भेल जूस, ये सब लेके जाओ। सैंडविच खाया तो फिर प्यास लगेगी। यात्रा फीकी फीकी नहीं है, ये यात्रा के आनंद को ढक लेता है भोजन। यात्रा तो रियल यात्रा तभी है जब आप एप्रिशिएट करो, एक एक आत्मा जो है उसको आप सकाश देख सकते हो इतनी शांति से। जैसे भोजन चला जाता है, मुरलियों सेंटर क्या करते हैं, हम सबसे पहले उठते हैं, फिर मुरली पढ़ते हैं, और मुरली पढ़ते समय भी ध्यान किस पे होता है, डब्बे डुब्बे कितने होते हैं सारे, फटाफट निकलते हैं, बेचारे दूसरे पैसेंजर भी देखने लगते हैं, ये क्या है, ये लोग ये क्या है, इनका इतने डब्बे खाने के, आश्चर्य होता है उनको, बेचारों का इतना छोटा सा एक डब्बा होता है, उपमा विपमा खाके, और ये बीकेएस का निकालते हैं ऐसे, एक चटनी निकलती है, फिर वो निकलता है, फिर वो निकलता है, उनको भी देते हैं, वो भी खुश होते हैं, वो भी अच्छी बात है। बट सबसे बेस्ट है ट्रैवलिंग में भूख ना लगे, प्यास ना लगे, ये सबसे अच्छा है। अगला है एनवायरनमेंट। एक आनंदी माँ है, सन्यासिनी है, हिमाचल में रहती है, अभी भी रहते हैं, और एक दो बार हमारी बातें होती रहती है उनसे। एक बार हुई ये बातें, उन्होंने अभी अभी बीच में 15 दिन का निर्जला किया, 15 दिन ना खाना ना पीना। उनका आश्रम है, हमने शिमला में है, हाँ, तो हमने पूछा आनंदी माँ से, कैसे किया आपने ये, थोड़ा अनुभव सुनाओ। तो उसका अपने गुरु के प्रति बहुत श्रद्धा है, उसने अपने पहले शरीर को तैयार किया, उसने कहा 10-15 दिन तो मैंने कच्चा खाया, फिर जूसेस पे रही, और फिर जिस दिन 15 दिन करना था गुरु का आशीर्वाद लिया। गुरु तो अभी नहीं रहे, आश्रम चलाती है, आश्रम अकेली चलाती है, सन्यासिनी है, बाल ब्रह्मचारिणी है, उसके आश्रम पर बहुत से लोग आते हैं। तो वो कहने लगी कि ये पूरा दिन श्रद्धा और भक्ति से सब कुछ किया उसने, गुरु का बार बार आह्वान किया, तलब होती थी भूख की, परंतु बिल्कुल जाप करती थी, मंत्र जाप और वो सब। पर उसने, हमने पूछा आपको कोई माया आई क्या इस बीच में, 15 दिन निर्जला करना बड़ा पुरुषार्थ है, ड्राई फास्टिंग, न खाना न पीना 15 डेज का। हमने कहा कोई माया आई, उसने कहा एक माया रोज आती थी, क्यों, क्योंकि उसको भोजन बनाना पड़ता था भक्तों के लिए, जो आश्रम पर संन्यास जो भक्त आते हैं उनके लिए उसको, तो उसकी जो सुगंध जो अंदर जाती थी ना वो कहती थी तब इच्छा होती थी। तो एक कारण है ये क्रेविंग का एनवायरनमेंट, भोजन का दर्शन, भोजन की खुशबू, अभी खाने की इच्छा नहीं है, पर पीछे वाले ने सैंडविच का बॉक्स खोला, पूरा नासा पुटों में चली गई सुगंध, पुराने पता नहीं किस जन्म के सारे संस्कार खुलने लगे, बस अब इंतजार है कि वो पूछे खाएंगे क्या, और वो पूछता है खाएंगे क्या, हम कह नहीं 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 जरूरत नहीं है, अच्छा ठीक है दे ही दो, मतलब ऐसे इधर से ना, इधर से हाँ, इधर से ना, इधर से आने दो। और जब भी 4 लोग खा रहे हो, मीटिंग चलती है ना मेडिकल में हमारे इधर, तो अगर कोई कहता है ना, जो परोसने वाला था आज से कहते, अरे डॉक्टर साहब को दो ना, मतलब मुझे भी दो, जब मुझे चाहिए तो क्या कहा जाता है, अरे इनको दो ना, अर्थात मुझे दो, टेक्निक है ये खुद नहीं बोलते कि मुझे चाहिए, क्योंकि अच्छा नहीं लगता ना, क्योंकि जब ऑफिशियल मीटिंग होती ना, इतू इतू सा खाते लोग, भूख ही नहीं, प्यास कुछ भरता ही नहीं पेट, क्योंकि अच्छा नहीं लगता ज्यादा खाना, ब्रेड इतू सा टुकड़ा, तो जूस इतू सा, अगर अकेले रहे तो सब मिलके खा लेगा आदमी, तब कहीं प्यास भूख भरती है, तृप्ति होती है, पर क्या करे मर्यादा है। तो अगला एनवायरनमेंट, इसलिए इस यात्रा में ज्यादा भोजन को देखते नहीं रहना, यूट्यूब पर रेसिपी सर्च नहीं करना, नॉट अलाउड, खुशबू लेते नहीं रहना, स्मेल अपियरेंस टेस्ट ये सब हमारे पूर्व कितने जन्मों जन्मों के संस्कार जुड़े हुए हैं। वो खिचड़ी देखते ही सीधा बचपन में माँ ने जो खिलाया था वो याद आ जाता है। तो एनवायरनमेंट, अगला इमोशनल स्टेबिलिटी। जब हमारे इमोशंस डिस्टर्ब्ड होते हैं तब भूख लगती है। हाँ, वो एक तपस्या है, वो तपस्या है। वो कहा ना, वो आनंदी माँ को हमने यही पूछा, आप कैसे करते थे? वो कहती थी बस गुरु का आशीर्वाद, गुरु की श्रद्धा, मंत्र जाप, उसी से उसने 15 दिन किए। उसके बाद इमोशनल स्टेबिलिटी। जब हम टेंशन में होते, स्ट्रेस होते, डिस्टर्बेंस होता है, कोई अपमान करता है, कोई डिस्टर्ब करता है, हम कमरे में आते क्या सोचते हैं, इतना डिस्टर्ब चल रहा है सब, हम भूख से उस स्ट्रेस को कम करना चाहते हैं। ये वैसा ही है जैसा कोई किसी की माँ मर गई, बाप मर गया, पिताजी कुछ भी हो गया, पत्नी मर गई, दारू पीते। किस लिए पीते व्यक्ति दारू? अपने दुख को दूर करने के लिए। एक व्यक्ति से एक व्यक्ति पूछता है तुम दारू क्यों पीते हो? क्योंकि कहते इतने प्रॉब्लम्स है दुनिया में, इतने प्रॉब्लम्स है मेरे जीवन में, पत्नी इतना परेशान करती है, बच्चे परेशान करते, इसलिए दारू पीता हूँ। तो कहता क्या दारू पीने से ये परेशानी ठीक हो गई? बोलते नहीं, परेशानियों ने दारू में तैरना सीख लिया अभी, इसलिए वो नहीं मरती अभी। अगला फूड का टाइम टेबल बना लो। एक अपने आप को संकल्प दे, अभी मुझे जो खाना है सीधा 10 बजे खाना है, उसके पहले कुछ नहीं, तो सीधा मन मानेगा। अगर कोई टाइम टेबल नहीं दिया, गए जो दिखा खा लेंगे, हाथ तो ऐसा झपटा मारा और गया अंदर, कुछ भी दिखता है, काजू दिखे खा लिया, सिंगदाना दिखा खा लिया, बिस्किट दिखा खा लिया, बिस्किट का एक पैकेट रखो खुला हुआ और सोचो कि मुझे 2 खाने, कभी नहीं खाएगा, पूरा खत्म करके ही दम लेंगे, क्योंकि खुला है वो। वो लोग सिनेमा देखने जाते हैं, सिनेमा घर में पॉपकॉर्न खाते हैं, भूख रहती है इसलिए खाते नहीं, वो हाथ अपने आप ऑटोमेटिक चलते पॉपकॉर्न खाने के लिए। अगला फूड का टाइम टेबल। फिर उसके बाद में बॉक्स ब्रीदिंग, ब्रीदिंग करो, जैसे ही भूख लगती है डीप ब्रीदिंग चालू करो, बॉक्स ब्रीदिंग जो समझाया था, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4 सांस लेने के लिए, 1 2 3 4 सांस रोक के रखना, 1 2 3 4 श्वास छोड़ना, 1 2 3 4 श्वास बाहर रोक के रखना। सिंपल है, स्क्वायर ब्रीदिंग, इसकी कई बार चर्चा हो गई है। उसके बाद में मेडिटेशन। मेडिटेशन अर्थात जितना अधिक मेडिटेशन हम करेंगे भूख अपने आप कम हो जाएगी। याद की यात्रा, ये बहुत पावरफुल टूल है। कितने हो गए? हो गए पूरे? नहीं, हो गए 18 हो गए। तो ये ऐसी 18 मेथड्स है जो कि हमें क्रेविंग से क्या कर देंगे, मुक्त करेंगे। किसी को पोएम सुनानी है ना, पोएम गीत, हाँ आ जाओ, पोएम सुनानी, पोएम लिखी है बहन जी ने, प्राणिक पोएम, हाँ इसी में, यह सत मेरा मैं राजा, बड़ी शान से जीवन सैर करूँ, इंद्रियों का स्वामी बनना इतना आसान नहीं है, तपस्या है। ये सारी बाधाएं आएगी और अभी हो सकता है अभी ये क्लास से उठते ही आ जाएगी, बाहर ही खड़ी है माया, कोई एक टोली दे दे, हमने सोचा था नहीं खानी है पर अब हाथ में टोली है, अभी हो सकती है पर्स में ही, टोली खाऊं कि नहीं खाऊं, खाऊं कि नहीं, मानसिक द्वंद्व चालू, खाऊं कि नहीं खाऊं, और फिर लास्ट में कहते छोड़ो सारा द्वंद्व, खा लो, देखेंगे बात का बाद में, कल से चालू करते अच्छे से एकदम। ओम शांति।
ओम शांति। शरीर का नाम है अवंती बहन, पुणे से है, कुछ दिन सेवा के लिए आए थे, 1 महीने के लिए। तो जो लिखा है वो टीचर के लिए, और ये हमारी जो क्रांति चल रही है, ये जो हमारी क्रांति चल रही है उसके ऊपर ये सोच के लिखा है कि हम सब मिलके ये गा रहे हैं, तो आप भी यही सोचो। बोल है हमें ले चले उस और, फिल्मी धुन है। हम तो चले प्राण के तले, फरिश्ते अब तो हम बने की बने, हाथों में लिए मशाल ये जले, तपस्या के मार्ग पर अब शपथ ये लिए, आपने जो ये क्रांति रची, साथ हम चले प्राण के तले, हमें ले वो चले हैं उस ओर, जहाँ ना हो काया का कोई शोर, हमें लिए वो चले हैं उस ओर। जहाँ ना हो काया का कोई शोर, धन्यवाद आपका हाथ हमको दिया, काफिला ये चला पर्व क्रांति का उठा, जागे अरमाने पद जो आगे बढ़े, आसमां और जमी अपने संग संग चले, जिस रास्ते आप है चले उस पे ही हो हमारे कदम, हमें ले वो चले है उस ओर। जहाँ ना हो साकार का कोई शोर, हमें ले वो चले है उस ओर। जहाँ ना हो साकार का कोई शोर, पालना जो मिली है बहुत ही जची, सराखों पे रखे सब देंगे सही, चल उठा सिलसिला दिया दिल में जला, आशियाना मिला पंख में फूल खिला, रंग लाएगा क्रांति का सफर, बादल हटे आए मंजिल नजर, हमें ले वो चले है उस ओर। जहाँ आए मंजिल ही नजर, हमें ले वो चले है उस ओर। जहाँ ना हो जहाँ आए मंजिल ही नजर, हमें ले वो चले है उस ओर, हमें ले वो चले है उस ओर। ओम शांति।